आज है 15 नवंबर दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। पिछले 37 बरस से जिम्बाब्वे में सत्तारूढ़ रहे राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को सेना ने नजरबंद किया, पर कहा ये तख्ता पलट नहीं है।
We wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government.
लेबनन और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा, पर ईरान की क्या भूमिका होगी?
ईरानियन बहुत समझदार लोग हैं, वो अपनी कैपेसिटी जानते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान लगातार बातचीत भी करता रहता है।
दुनिया जहान में सुनेंगे विस्तार से। और
इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि ये प्रेम किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखा कर ही रहेगा।
वयोवृद्ध कवि कुंवर नारायण नहीं रहे। शुरुआत विश्व समाचारों से।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे की सड़कों पर आज हथियारों से लैस गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। यहां बीती रात कुछ जगहों पर बम के धमाके और भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थीं। सरकारी टेलीविजन चैनल के मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद सेना के एक जनरल ने घोषणा की कि ये तख्तापलट की कोशिश नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुगाबे और उनका परिवार सुरक्षित है। इधर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जूमा ने कहा है कि उन्होंने रॉबर्ट मुगाबे से बात की है, जो सुरक्षित हैं लेकिन अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी ने कहा है कि वो अपना विशेष दूत जिम्बाब्वे भेजेंगे। यूरोप की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने अब तक का अपना सबसे बड़ा सौदा किया है, जिसके तहत अमरीकी कंपनी इंडिगो पार्टनर्स अपनी सस्ती विमानन कंपनी के लिए एयरबस के 430 विमान खरीदेगी। इन विमानों की कुल कीमत $50 अरब से कुछ कम है। हालांकि माना जा रहा है कि कंपनी को इस कीमत में बड़ी छूट दी गई है। इंडिगो पार्टनर्स के सह संस्थापक बिल फ्रेंक ने कहा कि उनके पास एयरबस को चुनने के बेहद अच्छे कारण थे।
In order for the model to be successful, you have to have an airplane that can be worked hard and can be...
किसी भी मॉडल की सफलता के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे विमान हों जो काफ़ी मेहनत कर सकें और कार्यकुशल हों। विमान मालिक के तौर पर आप सोचते हैं कि विमान के रखरखाव, ईंधन की खपत कितनी होगी और बाज़ार में यात्रा के लिए सीट बेचनी हो तो कितना दाम रखना होगा। मुझे खुशी है कि इन सभी श्रेणियों में एयरबस के विमान हमेशा से बेहतर रहे हैं। ये थे इंडिगो पार्टनर्स के सह संस्थापक बिल फ्रेंक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अपील की है कि म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले में प्रामाणिक और स्वतंत्र जांच की जाए। वो फिलहाल म्यांमार में नेताओं से मुलाकात करने के लिए म्यांमार के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा,
The recent serious allegations of abuses in Rakhine State demand a credible and impartial investigation.
रखाइन प्रांत में व्यापक हिंसा होने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके संबंध में निष्पक्ष और प्रामाणिक जांच की जानी चाहिए, और जो लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं या जिन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद में औपचारिक तौर पर सुनवाई शुरू हो गई है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बीते साल लीक हुए पनामा दस्तावेजों के अनुसार नवाज शरीफ और उनके बच्चों की विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी है। भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई कर रही कोर्ट ने दोनों को लंदन जाने की इजाज़त दे दी है, जहाँ नवाज शरीफ की पत्नी का इलाज चल रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद शरीफ को इस साल जुलाई में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने उन पर लगे आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित कहा है। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि वेनेजुएला ने रूस के साथ $3 अरब के ऋण के पुनर्गठन के से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि रूस बाद में समझौते के बारे में अधिक जानकारी जारी करेगा। वेनेजुएला अपने विदेशी ऋण के बारे में फिर से विचार कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार वेनेजुएला का ऋण $140 अरब तक हो सकता है। वेनेजुएला का कहना है कि वो ऋण का पुनर्भुगतान करना जारी रखेगा। इससे पहले मंगलवार को दो प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि वो आंशिक रूप से ऋण चुकाने से चूक गया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं लाइव। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और पिछले 37 साल से देश के राष्ट्रपति रहे रॉबर्ट मुगाबे को उन्हीं के घर में नजरबंद कर लिया गया है। कल रात राजधानी हरारे में धमाकों और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई पड़ी और अब वहां की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं। खबरों के मुताबिक सेना ने राष्ट्रीय टेलीविजन के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जूमा ने कहा है कि उन्होंने रॉबर्ट मुगाबे से फोन पर बात की है और मुगाबे ने ही उन्हें बताया कि वो ठीक हैं, पर उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर लिया गया है। कुछ ही दिन पहले मुगाबे ने उपराष्ट्रपति इमरसन मनांगवा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। बीबीसी संवाददाता इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, उनकी रिपोर्टों का सार सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
जिम्बाब्वे के सरकारी टेलीविजन चैनल पर एक सैनिक ने इस संदेश का प्रसारण किया। इसके पहले राजधानी हरारे के कुछ इलाकों से गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई दी थीं। उस सैनिक ने, जिसने अपना नाम नहीं बताया, टीवी पर कहा, अपने लोगों और जो हमारी सीमा के पार रह रहे हैं, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये हुकूमत पर सेना का कब्जा नहीं है। सेना देश की भ्रष्ट हो रही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। सेना का लिबास पहने इस व्यक्ति ने कहा कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और उनका परिवार सुरक्षित है, वो उनके सुरक्षा की गारंटी देते हैं। उस सैनिक ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रपति के इर्द गिर्द मौजूद उन अपराधियों को जिन्होंने देश पर सामाजिक और आर्थिक विपदा लाई है पकड़ लिया जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे। जिम्बाब्वे की सत्ताधारी पार्टी जानू पीएफ ने मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल कॉन्स्टेंटिनो शिवेंगा पर तख्तापलट का आरोप लगाया था। जनरल शिवेंगा ने यह बयान दिया था कि देश में जारी राजनीतिक रस्साकशी के खात्मे के लिए सेना हस्तक्षेप कर सकती है। बीबीसी अफ्रीका के संपादक मिल्टन कोसी का कहना है कि राष्ट्रपति मुगाबे और सेना के बीच मतभेद के संकेत उपराष्ट्रपति इमरसन मनांगवा को पिछले हफ्ते मुअत्तल किए जाने के बाद से ही सामने आने लगे थे। ऐसा समझा जा रहा था कि 93 साल के मुगाबे पार्टी में अपनी पत्नी ग्रेस का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पार्टी में कुछ लोग, खासतौर पर युवाओं का एक वर्ग, पार्टी में ग्रेस को आगे देखना चाहता है, लेकिन उपराष्ट्रपति मनांगवा इसका विरोध कर रहे थे। कुछ युवा ये भी कह रहे हैं कि जनरल शिवेंगा को सेना के सभी तबकों का सहयोग हासिल नहीं है। एडी क्रॉस विपक्षी दल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के सांसद हैं। उनका कहना था कि इस तख्ता पलट की रणनीति उपराष्ट्रपति मनांगवा ने तैयार की है।
वो ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड के अध्यक्ष हुआ करते थे। देश में ये व्यवस्था आजादी के वक्त से कायम है। इस तरह की कोई कार्रवाई उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकती थी। वो एक बहुत शातिर व्यक्ति और बहुत अच्छे आयोजक हैं। बहुत जल्दी हम सुनेंगे कि मुगाबे ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया है और इमरसन मुअंगवा को अपना वारिस नियुक्त कर गए हैं।
एलेक्स मायगाइसा विपक्ष के नेता के सलाहकार रहे हैं। वो कहते हैं,
उन्होंने इसे तख्तापलट नहीं कहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लोगों को मान्य नहीं होगा। लोग इसकी निंदा करेंगे, इसलिए वो इसे दूसरे नामों से पुकार रहे हैं। लेकिन जहां तक हुकूमत का सवाल है, ये साफ है कि मुगाबे अब सिर्फ नाम के राष्ट्रपति हैं, जबकि सत्ता की बागडोर सेना के हाथ में है।
बीबीसी के दक्षिण अफ्रीका के संवाददाता एंड्रयू हार्डिंग का कहना है कि ये जानू पीएफ पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष का नतीजा है और इसमें जिसकी भी जीत होगी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। संवाददाता का कहना है कि मुगाबे ने यह सोचकर गलती की कि 93 साल की उम्र में भी वो अपनी पत्नी का समर्थन कर पार्टी में वंशवाद जारी रख सकते हैं।
ये रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। रॉबर्ट मुगाबे अपने देश के ही नहीं बल्कि अफ्रीका के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। 60 के दशक में साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष ने उन्हें क्रांतिकारी नेता के तौर पर पहचान दिलाई। बाद में वो चुनाव लड़े और पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। ताउम्र आदर्शों और सिद्धांतों की बात करने वाले मुगाबे कई मोर्चों पर विफल भी रहे। 93 बरस के हो चुके मुगाबे के जीवन की तमाम पहलुओं पर नजर डाल रही हैं हमारी सहयोगी गुरप्रीत कौर।
Based on the principle of non-racialism.
मैं एक ऐसा समाज देखना चाहता हूं जो गैर नस्ल भेद के सिद्धांत पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में कहें तो मौजूदा प्रणाली में जमीन का बंटवारा नस्ल के आधार पर होता है। आर्थिक जगत नस्ल के आधार पर काम करता है। मैं चाहूंगा कि ये तरीका विदा हो जाए।
साल 1976 में रॉबर्ट मुगाबे ने ये बात एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही थी। उस वक्त उनकी पहचान साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले सेनानी की थी। उन्होंने नस्लभेदी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, जेल भी गए और तब के रोडेशिया और अब के जिम्बाब्वे को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। ये वो दौर था जब मुगाबे को क्रांतिकारी नायक के रूप में देखा जाता था। उनकी वो छवि आज भी लोगों के जहन में कैद है और अब भी कई अफ्रीकी नेता मुगाबे की निंदा करने से बचते हैं। संघर्ष के नायक के तौर पर मुगाबे ने हमेशा खुद को लोकतंत्र समर्थक के तौर पर पेश किया।
We are fighting for democracy. We would like to see a democratic state established in Zimbabwe.
हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम जिम्बाब्वे में एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होती देखना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि राज्य बहुमत की मर्जी के मुताबिक हो। लोकतंत्र में लोग मतदान के जरिए ही अपनी सहभागिता को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव कराना जरूरी है।
ये थे रॉबर्ट मुगाबे के शब्द। साल 1980 में जनू पीएफ पार्टी का नेतृत्व करते हुए रॉबर्ट मुगाबे ने आम चुनाव लड़ा और जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री बन गए। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। शताब्दी बदली और साल 2000 में मुगाबे के एक बड़े फैसले ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने जिम्बाब्वे में व्यापक भूमि सुधारों की घोषणा की, जिसमें हजारों गोरे फार्म मालिकों की जमीन देश के काले किसानों को लौटाने की व्यवस्था की गई थी। इस फैसले के कारण रॉबर्ट मुगाबे की पश्चिमी मुल्कों में कड़ी आलोचना हुई, लेकिन मुगाबे ने अपना रुख नहीं बदला। अब से कुछ बरस पहले उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
The white farmers have channels they must follow. They are not superhuman beings.
गोरे किसानों के पास ऐसे रास्ते हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। वो महामानव नहीं है। वो उपराष्ट्रपति से बात कर रहे हैं जो जमीन अधिग्रहण कार्यक्रम के प्रमुख हैं।
ये थे रॉबर्ट मुगाबे के शब्द। पश्चिमी देशों ने मुगाबे के कड़े तरीकों के विरोध में आर्थिक पाबंदियों की घोषणा की। इस दौर में मुगाबे ने कहा था कि देश कभी दिवालिया नहीं हो सकता, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहा जिम्बाब्वे उनके सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। साल 2008 के चुनाव के दौरान मुगाबे ने कहा था कि अगर आप चुनाव हार जाएं और जनता की ओर से अस्वीकार कर दिए जाएं, तो आपको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन जब मुगाबे को पर्याप्त वोट नहीं मिले तो उन्होंने बयान बदलते हुए कहा कि उन्हें उनके पद से सिर्फ खुदा ही हटा सकता है। 1924 में जन्मे मुगाबे 93 साल के हो चुके हैं। वो दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। मुगाबे के करीबी डिडमिस मुतासा ने एक बार बीबीसी से कहा था कि जिम्बाब्वे की संस्कृति में राजा तभी बदलता है जब उसकी मौत हो जाए, लेकिन इस बार ये कहावत गलत साबित होती दिख रही है।
रॉबर्ट मुगाबे के बारे में जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी गुरप्रीत कौर।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदी के वरिष्ठ कवि वयोवृद्ध कवि कुंवर नारायण का निधन हो गया है। उन पर जानकारी कुछ ही देर में हम आप तक पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है दुनिया जहान का। करीब दो हफ्ते पहले लेबनन के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी के इस्तीफे के बाद मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। हरीरी ने अपने इस्तीफे का ऐलान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया। आज पहली बार लेबनन के राष्ट्रपति माइकल आउन ने सऊदी अरब पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री साद अल हरीरी और उनके परिवार को हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। खाड़ी के देशों के इस संकट पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी वात्सल्य राय दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। तारीख थी 14 फरवरी 2005 और जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी का काफिला राजधानी की सड़कों से गुजर रहा था। सधी रफ्तार से दौड़ती कारें जैसे ही शहर के मशहूर सेंट जॉर्ज होटल के करीब से गुजरी, एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। बुरी तरह टूटी कारों से उठते धुएं की लकीरें दूर तक दिखाई देने लगी। एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ियों के सायरन और रोते बिलखते लोगों की आवाजें कान के पर्दों को चीरने लगी। इस धमाके में 1990 के दशक में लेबनान के सबसे प्रभावी नेता रफीक हरीरी समेत 22 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में सीरिया के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और सीरिया को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। देश में राजनीतिक अस्थिरता का एक और दौर शुरू हो गया। लंबी जांच के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने ईरान समर्थित शिया समूह हिजबुल्ला के 5 सदस्यों को रफीक की हत्या का दोषी ठहराया, लेकिन हिजबुल्ला ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। बेरूत में हुए उस धमाके के करीब 15 साल बाद यानी नवंबर 2017 के पहले हफ्ते में हरीरी सरनेम वाले लेबनान के एक और प्रमुख नेता ने दावा किया कि उनके लिए भी वैसी ही साजिश रची जा रही है। ये है साद अल हरीरी, रफीक हरीरी के बेटे। उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बयान जारी किया और प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लेबनान में खासा प्रभाव रखने वाले हिजबुल्ला और ईरान पर आरोपों की झड़ी लगा दी और इसी के साथ पूरे क्षेत्र में नए संघर्ष से जुड़ी आशंकाओं के बादल घिर गए। मध्य पूर्व की राजनीति पर नजर रखने वाले इसे सुन्नी और शियाओं के पारंपरिक संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ है सुन्नी नेतृत्व वाला सऊदी अरब और दूसरी तरफ शिया प्रभुत्व वाला ईरान। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि अगर हिजबुल्ला कमजोर होता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र में ईरान के बढ़ते दबदबे पर होगा।
लेबनान में अगर हिजबुल्ला कमजोर होती है तो शिया इन्फ्लुएंस जो है ईरान का सीरिया में भी इफेक्टेड होगा, इसलिए हिजबुल्ला काफी बड़ा रोल था आईएसएस से लड़ने में और बशर अल असद की हुकूमत को बचाने में सीरिया के अंदर। उन्हीं ने इराक में भी शिया मलिशिया उसकी मदद की थी जो आईएसएस से लड़ रहे थे।
ईरान पर तोहमत लगाते हुए इस्तीफे का ऐलान करने वाले साद की गिनती अपने पिता की ही तरह देश के सबसे दौलतमंद और प्रभावी नेताओं में होती है। उन्हें रफीक ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। साद हरीरी साल 2009 से 2011 तक लेबनान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बीते साल नवंबर में उन्हें राष्ट्रपति मिशेल आउन ने सरकार बनाने के लिए नामित किया था। साद के नाटकीय तरीके से इस्तीफा देने और इस्तीफे के ऐलान के लिए रियाद को चुनने पर कई सवाल उठे। इस बीच जब सऊदी अरब और उसके समर्थक खाड़ी देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की सलाह दी तो वहां संघर्ष छेड़ने की आशंकाओं को बल मिला। साद हरीरी भले ही मौजूदा हालात की तुलना फरवरी 2005 से कर रहे हों, लेकिन लेबनान में भारत के राजदूत रह चुके डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल उनके तर्कों से सहमत नहीं है।
यकीन नहीं होता कि आज की स्थिति में वहाँ जो हिजबुल्ला है वो साद हरीरी को मारने की कोशिश करेगा तो उनको मिलेगा क्या, तो ये एक आर्टिफिशियल चीज है, मुझे सही नहीं लगता।
लेबनान में बदलते घटनाक्रम के बीच देश में हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने साद हरीरी को उनकी मर्जी के बिना रोका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इसराइल को भी भड़का रहा है। कई जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि लेबनान में जारी उथल पुथल की स्क्रिप्ट रियाद में लिखी जा रही है और इसके रणनीतिकार सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान है। डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं।
क्राउन प्रिंस का जो एक्शन है इट विल डीस्टेबलाइज लेबनान, जिस तरह वो यमन में कर रहे हैं कि शियास को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका होगा कि लेबनान में करें और सीरिया में करें और जिससे ईरान अपनी जगह पर सिमट के रह जाए। पासा उन्होंने डाला है, सीधा पड़े या उल्टा।
लेकिन सऊदी अरब में जन्मे और वहाँ व्यापारिक हित रखने वाले साद हरीरी रियाद को क्लीन चिट दे रहे हैं।
मैं सऊदी अरब में आजाद हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कल जा सकता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा एक परिवार है, क्या मेरे पास उन्हें सुरक्षित करने का अधिकार नहीं है?
हालांकि साद हरीरी के दावों पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा को सुनिए।
जिस तरीके से उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद बहुत समय तक वो लोगों से नहीं मिले, केवल रॉयल फैमिली के लोगों से वो मिलते थे, यूएई में भी वो रॉयल फैमिली के टच में थे, कोई उनका टच उनकी पॉलिटिकल पार्टी तक से नहीं था।
लेबनान में दिलचस्पी सिर्फ अरब देशों और ईरान की ही नहीं है। महज 10,000 वर्ग किलोमीटर दायरे में सिमटा यह देश वाणिज्यिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इसकी सीमाएं सीरिया और इसराइल से लगती हैं। 1980 के दशक में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। इसके बाद हिजबुल्ला का उदय हुआ और शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन लेबनान का संविधान देश के शिया, सुन्नी और ईसाई समुदाय को जोड़कर रखने वाला है। ईसाइयों की मौजूदगी लेबनान में अमरीका की खास दिलचस्पी जगाती है, लेकिन डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल का दावा है कि निजी हितों की वजह से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का साथ दे रहे हैं।
ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ हैं कुशनर, वो आए थे मिडिल ईस्ट, उनकी बस एक ही इच्छा है कि ये हमने इजरायली पैलेस्टीनियन एग्रीमेंट करवाया, इसके लिए वो सऊदी अरेबिया को अपने साथ लाना चाहते थे। जब सऊदी अरेबिया गए ट्रंप साहब, तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई। अगर वो फैक्टर ही डोमिनेट करता है और वो इसको नहीं समझते तो समस्या बिगड़ सकती है।
लेकिन अमेरिका भी लेबनान में संघर्ष भड़कने के जोखिम से वाकिफ है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने दूसरे देशों को आगाह किया है कि वो लेबनान को छद्म युद्ध के लिए इस्तेमाल न करें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में नए संघर्ष के नतीजे घातक होंगे। लेकिन लेबनान संकट को हल करने के लिए दुनिया की कई ताकतें सक्रिय दिख रही हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल मानते हैं कि लेबनान संकट हल करने में फ्रांस की भी दिलचस्पी है।
इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी एट वन स्टेज। फ्रेंच लोग शायद अमेरिका पे प्रेशर डालें कि भी आप सऊदी अरेबिया पे कुछ दबाव डालिए।
वही कमर आगा की राय है कि संकट भले ही कितना भी गंभीर दिख रहा हो, ईरान इसे टकराव तक ले जाने से बचेगा।
ईरानियन बहुत समझदार लोग हैं, वो अपनी कैपेसिटी जानते हैं, वो एक लिमिट तक कन्फ्रंटेशन में जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान लगातार बातचीत भी करता रहता है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बात किसी एक पक्ष के संयम रखने से सुलझ पाएगी, या फिर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश संकट के समाधान के लिए सभी पक्षों पर वास्तविक दबाव बनाएंगे। इस सवाल के जवाब से ही तय होगा कि लेबनान और मध्य पूर्व पर छाए आशंका के बादल छटेंगे या नहीं।
उम्मीद है दुनिया जहान का यह अंक आपको पसंद आया होगा। दिनभर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं, मैं हूं राजेश जोशी। हिंदी कवि कुंवर नारायण का 90 वर्ष की परिपक्व आयु में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज तीसरे पहर किया गया। 50 के दशक में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में उनका शुमार हुआ था। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। उन्हें उनके साहित्य सर्जन के लिए पद्मभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। समाज के लिए एक कवि के जाने का क्या अर्थ होता है और कवि समाज पर क्या असर छोड़ता है, ऐसे ही कुछ सवालों पर मैंने हिंदी के वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल से बात की।
कुंवर जी पूर्णतर मनुष्यता के कवि हैं और वो उन्होंने अपनी एक कविता में ये कहा था, अगर अब की लौटा तो पूर्णतर होकर लौटूंगा और मनुष्य और हित अहित सोचता हुआ मैं मनुष्य के लिए बेहतर होकर लौटूंगा। तो ये जो एक तो उनकी कविता केंद्र में मनुष्य बहुत ज्यादा है, वो यहाँ तक कि उनकी कविता नीम के फूल जो है वो उनकी माँ के बारे में बात करती, जिनके जिनके शब्द पर नीम के फूल झड़ते हैं।
उन्होंने अपनी कविता में ये कहा है कि एक बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है, लड़ने झगड़ने के बहुत सारे मौके आए, इस विचार को लेकर के उन्होंने कविता लिखी है।
लेकिन जरा से प्रेम में डूबा रहा
और समय निकल गया,
इसी में जीवन बीत गया। और दूसरी बात यह है कि कुंवर जी की कविताओं में एक अद्भुत शांति है, बाहर भी और भीतर भी। तो जबकि ये दुनिया इतने भयानक रूप से अशांत हो चुकी है, उसमें एक कवि जिस तरह की शांति को जन्म दे रहा अपने शब्दों और अपने भाषा के माध्यम से, वो एक बहुत ही अनोखी चीज है।
मंगलेश जी, मुझे इस बात का एहसास है कि आप उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इस वक्त जा रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात या व्यक्तिगत यादों का कोई जिक्र करना चाहेंगे, व्यक्ति के तौर पे आप उनको कैसा?
मेरी उनकी जब मैं लखनऊ अमृत प्रभात में था उस समय से ही बहुत मुलाकातें हैं और मुझे याद है वो एक पूंजीपति घराने से थे और लखनऊ का हजरतगंज में उनकी स्पीड मोटर्स, उनकी मर्सिडीज गाड़ियों की एजेंसी थी और वो उसमें एक मैनेजिंग पार्टनर थे। लेकिन अक्सर भाई ये कहते थे कि मैं मैनेजिंग पार्टनर नहीं डैमेजिंग पार्टनर हूँ। तो ये जो डैमेजिंग पार्टनर के रूप में उन्होंने कभी पूंजी की ओर या मुनाफे की ओर कभी आकर्षित नहीं हुए।
आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि एक कवि जिसका इतना लंबा भरा पूरा जीवन रहा, साहित्यिक जीवन भी और व्यक्तिगत जीवन भी, क्या इस समाज पर जो, और खासतौर पर हिंदी समाज है, वो कितना शुक्रगुजार है इस कवि का?
देखिए, बात है हिंदी समाज से, हिंदी समाज बहुत व्यापक है, उसमें कवियों और संवेदनशील लोगों का एक छोटा सा तबका है, एक अल्पसंख्यक तबका जो कि शुक्रगुजार महसूस करता है, जाहिर है। लेकिन हिंदी में वो संस्कृति है नहीं अपने कवियों से प्रेम करने की, सीखने की। हिंदी समाज बहुत बढ़िया तक संस्कृतिहीन और भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए उससे कोई बहुत बहुत उम्मीद नहीं है। शांत दुनिया में जब भी अभी कवि में शांति का जिक्र आएगा, कोनारायण जी की कविता हमेशा याद की जाती रहेगी।
ये थे कवि मंगलेश डबराल। एक कवि को याद करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि कुछ उन्हीं की कविताओं पर बात की जाए।
एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता हूं जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन त्यागराजा मुत्तुस्वामी, लाख समझाता अपने को कि ये मेरे नहीं दूर दक्षिण के हैं, पर मन मन है कि मानता ही नहीं बिना इन्हें अपनाए। और वो प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी मां, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। दिनों दिन मेरा ये प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि ये प्रेम किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखा कर ही रहेगा।
कुंवर नारायण को बीबीसी की अंतिम श्रद्धांजलि। उनकी ये कविता पढ़ी मोहनलाल शर्मा ने। अब खेल समाचारों का वक्त नहीं है, सिर्फ इतना बता दें कि चीन में चल रहे चाइना ओपन सुपर सीरीज में भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल अमरीकी खिलाड़ी बेवेन जेंग को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। साइना नेहवाल ने बेवेन जेंग को 21-12, 21-13 से मात दी। साइना नेहवाल का अगला मुकाबला जापान की अकाने यामागुची के साथ होगा। और चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। जिम्बाब्वे में सेना ने सरकारी टेलीविजन चैनल के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। हालांकि एक जनरल ने घोषणा की है कि ये तख्तापलट की कोशिश नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा ने कहा है कि उन्होंने रॉबर्ट मुगाबे से बात की है जो सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद कर लिया गया है। यूरोप की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने अब तक का अपना सबसे बड़ा सौदा किया है, जिसके तहत अमरीकी कंपनी इंडिगो पार्टनर्स अपनी सस्ती विमानन कंपनी के लिए एयरबस के 430 विमान खरीदेगी। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अपील की है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले में प्रामाणिक और स्वतंत्र जांच की जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद में औपचारिक तौर पर सुनवाई शुरू हो गई है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि वेनेजुएला ने रूस के साथ 3 अरब डॉलर के ऋण के पुनर्गठन से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजीत सारथी ने और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की प्रज्ञा मानव ने। मैं राजेश जोशी अब सभी साथियों की ओर से आपसे अनुमति चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।